तुलसी की काव्य पद्धति का शेष अंश पृष्ठ 46। जैसा कि कहा जा चुका है, मानस में तुलसीदास जी धर्मोपदेष्टा और नीतिकार के रूप में भी सामने आते हैं। वह ग्रंथ एक धर्म ग्रंथ के रूप में भी लिखा गया और माना जाता है। इससे शुद्ध काव्य की दृष्टि से देखने पर उसके बहुत से प्रसंग और वर्णन खटकते हैं, जैसे पातिव्रत और मित्र धर्म के उपदेश, उत्तरकांड में गरुड़ पुराण के ढंग का कर्मों का ऐसा फलाफल कथन, हरिगुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, सुरश्रुति निंदक ते अभिमानी, रौरव नरक पहई ते प्राणी, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दुर होई अवतरही। अब विचारना यह चाहिए कि साहित्य की दृष्टि से ऐसे कोरे उपदेश का मानस में क्या स्थान होगा। मानस एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में कवि लोग पात्रों की प्रकृति और शील का चित्रण भी किया करते हैं। मानस में उक्त प्रकार के उपदेशात्मक वचन किसी न किसी पात्र के मुंह से कहलाए गए हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसे वचन पात्रों के शील व्यंजक मात्र हैं और काव्य प्रबंध के अंतर्गत है। पर विचार करने पर यह साफ झलक जाता है कि उन उपदेशात्मक वचनों द्वारा कवि का लक्ष्य वक्ता पात्रों का चरित्र चित्रण करना नहीं, उपदेश ही देना है। चरित्र चित्रण मात्र के लिए जो वचन कहलाए जाते हैं, उनके यथार्थ अयथार्थ का संगत असंगत होने का विचार नहीं किया जाता। फुटनोट 1, अर्थ दोज कॉन्सेप्ट विच आर फाउंड मिंगल्ड एंड फ्यूज्ड विद इंट्यूशंस आर नो लॉन्गर कॉन्सेप्ट इन सो फार एज दे आर रियली मिंगल्ड एंड फ्यूज्ड फॉर दे हैव लास्ट ऑल इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल द फिलोसफिकल मैगजीम्स प्लेस्ड इन द माउथ ऑफ अ परसोनेज ऑफ ट्रेजिडी और कॉमेडी टू परफॉर्म देयर द फंक्शन नॉट ऑफ कंसेप्ट बट ऑफ करेक्ट रियलिस्ट ऑफ द परसोनेज। एस्थेटिक्स बेनेडेटो कोचे कृत। पर मानस में आए उपदेश इसी दृष्टि से रखे जाने पड़ते हैं कि लोग उन्हें ठीक मानकर उन पर चलें। अतः यही मानना ठीक होगा कि ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी का कवि का रूप नहीं, उपदेशक का ही रूप है। अब हम इन कोरे और नीरस उपदेशों को काव्य क्षेत्र के भीतर समझे या बाहर, भीतर समझने के लिए यही एक शास्त्रीय युक्ति है कि जैसे समूचे प्रबंध के रस से बीच बीच में आए हुए आगे चले बहुरी रघुराई, ऐसे नीरस पद भी रसवान हो जाते हैं, वैसे ही इस प्रकार के कोरे उपदेश भी। अब रहा यह कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना में वाल्मीकि से भिन्न पथ का जो बहुत जगह अवलंबन किया है, वह किस विचार से? पहली बात तो यह है कि वाल्मीकि ने राम के नरत्व और नारायणत्व इन दो पक्षों में से नरत्व की पूर्णता प्रदर्शित करने के लिए उनके चरित्र का गान किया है, पर गोस्वामी जी ने राम का नारायणत्व लिया है और अपने मानस को भगवत भक्ति के प्रचार का साधन बनाया है। इससे कहीं कहीं उन्होंने उनके नरत सूचक लक्षणों को दृष्टि के सामने से हटा दिया है, जैसे वनवास का दुख संवाद सुनाने जब राम कौशल्या के पास जाने लगते हैं, तब वाल्मीकि ने उनके दीर्घ निश्वास और कंपित स्वर का उल्लेख किया है। पृष्ठ 47। सीता को अयोध्या में रहने के लिए समझाते समय उन्होंने कहा है कि भरत के सामने मेरी प्रशंसा न करना। इसी प्रकार मृग को मारकर लौटते समय आश्रम पर सीता के न रहने की आशंका उन्हें होने लगी है। तब उनके मुंह से निकल पड़ा कि कैकेयी अब सुखी होगी। ऐसे स्थलों पर राम में इस प्रकार का क्षोभ गोस्वामी जी ने नहीं दिखाया है, पर साथ ही काव्यत्व की उन्होंने पूरी रक्षा की है, अस्वाभाविकता नहीं आने दी है। अवसर के अनुसार दुख शोक आदि की उनके द्वारा पूरी व्यंजना कराई है। अध्यात्म रामायण भक्ति परक ग्रंथ है, इससे अनेक स्थलों पर उन्होंने उसी का अनुसरण किया है। पैराग्राफ चेंज। पर बहुत कुछ परिवर्तन गोस्वामी जी ने अपने समय की लोक रुचि और साहित्य की रूढ़ि के अनुसार किया है। वाल्मीकि ने प्रेम का स्फुरण केवल लोक कर्तव्यों के बीच में ही दिखाया है, उनसे अलग नहीं। उनकी रामायण में सीता राम के प्रेम का परिचय हम विवाह के उपरांत ही पाते हैं, पर गोस्वामी जी के बहुत पहले से ही काव्यों में विवाह के पूर्व नायक नायिका में प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाने की प्रथा प्रतिष्ठित चली आती थी। इससे उन्होंने भी प्रेमाख्यानी रंग कोष्टक में रोमांटिक टर्न देने के लिए जयदेव के प्रसन्न राघव नाटक का अनुसरण करके धनुष यज्ञ के प्रसंग में फुलवारी के दृश्य का सन्निवेश किया। उन्होंने जनक की वाटिका में राम और सीता का साक्षात्कार करा के दोनों के हृदय में प्रेम का उदय दिखाया। पर इस प्रेम प्रसंग में भी राम कथा के पुनीत अवसर में कुछ भी अंतर न आने पाया, लोक मर्यादा का लेस मात्र भी अतिक्रमण न हुआ। राम सीता एक दूसरे का अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध होते हैं। सीता मन ही मन राम को अपना वर बनाने की लालसा करती है, उनके ध्यान में मग्न रहती है, पर पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा। वे इस बात का कहीं आभास नहीं देती कि पिता चाहे लाख करे मैं राम को छोड़ और किसी के साथ विवाह न करूंगी। इसी प्रकार राम भी यह कहीं व्यंजित नहीं करते कि धनुष चाहे जो तोड़े मेरे देखते सीता के साथ कोई विवाह नहीं कर सकता। पैराग्राफ चेंज। वाल्मीकि ने विवाह हो जाने के उपरांत मार्ग में परशुराम का मिलना लिखा है, पर गोस्वामी जी ने उनका झमेला विवाह के पूर्व धनुर्भंग होते ही रखा है। इसे भी रसात्मकता की मात्रा बढ़ाने की काव्य युक्ति ही समझना चाहिए। वीर गाथा काल के पहले से ही वीर काव्यों की वह परिपाटी चली आती थी कि नायिका को प्राप्त करने के पहले नायक के मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं खड़ी होती थीं, जिन्हें नायक अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हुआ दूर करता था। इससे नायक के व्यक्तित्व का प्रभाव नायिका पर और भी अधिक हो जाता था, उस पर वह और भी अधिक मुग्ध हो जाती थी। रासो नाम से प्रचलित वीर काव्यों में वीर नायक अपने विरोधियों को परास्त करने के उपरांत नायिका को ले जाता था। रामचंद्र जी का तेज और पराक्रम धनुष तोड़ने पर व्यक्त हुआ ही था और सीता पर उनका अनुराग वर्धक प्रभाव पड़ा ही था कि परशुराम के कूद पड़ने से प्रभाव वृद्धि का दूसरा अवसर निकल आया। परशुराम ऐसे दिग्विजयी और तेजस्वी का भी तेज राम के सामने फीका पड़ गया। उस समय राम की ओर सीता का मन कितने और अधिक वेग से आकर्षित हुआ होगा, राम के स्वरूप ने किस शक्ति के साथ उनके हृदय में घर किया होगा।